अगली सुबह इशिका उठी। उसने केशव को घर आने के बारे में नहीं बताया था, वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। इशिका अपनी तरफ से तैयार थी कि तभी अभिमन्यु कमरे में दाखिल हुआ। इशिका को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इशिका ने अभिमन्यु के पास आकर उसकी टाई सही करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं जाना कैंसिल भी कर सकती हूँ। क्यों ना मैं फिर से राजवंश एम्पायर ज्वाइन कर लूँ, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। अभिमन्यु ने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए कहा, तो मैडम को मेरे साथ रहना है, फिर छुपकर मिलने में क्या मज़ा आएगा? जब तक पूरे दिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मिलने की तड़प भी नहीं उठेगी। ओ, तो मिस्टर राजवंश को पूरी तरह बॉयफ्रेंड के रोल में आना है। मिलने आओगे तब चॉकलेट्स और बुके तो लेकर आओगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड खाली हाथ आने पर नाराज़ हो जाए, इशिका ने उसे परेशान करते हुए कहा। बस बुके और चॉकलेट ही चाहिए, मुझे लगा मेरी गर्लफ्रेंड को ब्रांडेड बैग और मेकअप का सामान चाहिए होगा, अभिमन्यु ने उसकी नाक पर किस करके कहा। वो क्या है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा खुशी देती हैं, इशिका ने जवाब दिया और जल्दी से उसके गाल पर किस करके अलग हो गई। अभिमन्यु इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। इशिका अपना बैग उठाने लगी तभी अभिमन्यु बोला, अच्छा सुनो, मिस्टर सिंघानिया को बोलना कि तुम मुझसे नाराज़ होकर उनके पास रहने को आई हो। बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए और मुसीबतें खड़ी कर देंगे, इशिका ने तुरंत मना करते हुए कहा। आई वॉन्ट कि मेरी गर्लफ्रेंड के डैड विलन बनकर मेरे रास्ते में आए, बोलें कि जितना तुम कमाते हो उतना मेरी बेटी एक हफ्ते में उड़ा देती है, अभिमन्यु ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। पर वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, तुम्हारी नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है, इशिका ने सिर हिलाकर कहा, तो जवाब में अभिमन्यु ने कंधे उचका दिए। उसने हाउस हेल्पर को बुलाकर इशिका का सामान गाड़ी में रखवाया और फिर अभिमन्यु के साथ जाने के बजाय अकेली केशव के घर पहुंची। वहीं केशव ने अचानक इशिका को वहां पर देखा तो वो हैरान रह गया। इशिका तेज कदमों से चलती हुई उसके पास आई और उसे गले लगाकर बोली, डैड, क्या कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास रह सकती हूँ? बेटा, इसमें पूछने जैसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्यों आई हो और अभिमन्यु कहाँ है? उसने तुम्हें अकेले आने कैसे दिया? केशव नाराज होते हुए बोले। इशिका उनसे अलग हुई और नजरें नीचे करके बोली, इसके बारे में कुछ मत पूछिए डैड, हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया है, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है। क्या आप मेरा सामान रूम में शिफ्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल, चलो तुम मेरे साथ आओ और ब्रेकफास्ट करो, केशव ने प्यार से कहा और इशिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गए। जब अभिमन्यु ने पहले इशिका को ऐसा करने के लिए कहा ताकि वो सच में उसे छुपकर मिलने आ सके, तब इशिका को उसका आइडिया बहुत अजीब लगा था, लेकिन बाद में वो मान गई थी। इशिका केशव के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और अरमान वहां से वापस दिल्ली जा चुका था। ब्रेकफास्ट करते हुए इशिका ने कहा, डैड, ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ी देर आराम करके लैब जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ प्रोजेक्ट पर काम करना है। बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो और लैब में काफ़ी खतरनाक केमिकल्स होते हैं, ऐसे में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं रहेगा, केशव उसे समझाते हुए बोले। नहीं डैड, आप भी मुझे अभिमन्यु की तरह मना मत कीजिए, वरना मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी, मेरा काम मेरे लिए ज़रूरी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी पहचान सिर्फ अभिमन्यु राजवंश की पत्नी के तौर पर रहे, जल्द ही मेरी कंपनी भी पब्लिक होने वाली है, इशिका ने जवाब। बातों ही बातों में उसने एक झूठा बहाना बता दिया था कि उसके और अभिमन्यु के बीच लड़ाई क्यों हुई होगी। इशिका को लगा कि केशव उसका साथ देंगे, उससे अलग उन्होंने कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर बार की तरह वो लड़का इस बार भी सही है, वो तुम्हारी परवाह करता है। ठीक है, तुम यहाँ पर रहने आई हो ये अच्छी बात है, पर तुम्हें लैब जाने की इजाज़त तो मैं भी नहीं दूंगा। एक पल के लिए इशिका को लगा कि उसने झूठा बहाना बनाकर खुद को मुसीबत में डाल दिया है। इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, डैड, मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बल्कि रिसर्च के लिए जा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, केशव बोले। इशिका ने उनकी बात पर हामी भर दी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद इशिका आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु राजवंश एम्पायर पहुंचा। आज वो पूरे मूड में था उन सबको सजा देने की जो उसके पीठ पीछे प्लानिंग करने में लगे रहते थे, खासकर नक्श। अभिमन्यु ने नक्श की पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवाई। उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड बन गया था। देखा जाए तो उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो उसे ये पोजीशन दिया जाए। पृथ्वी ने अभिमन्यु को नक्श की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देते हुए कहा, मैंने पता किया है, ऊपर से रोहन ने भी बताया था कि अपनी पोजीशन का नक्श इन दिनों कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठा रहा है, जिसे मन करता है उसे काम से निकाल देता है और जानबूझकर ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए देता है जिन्हें करते हुए एम्प्लॉयज को छुट्टी तक नहीं मिल पाती है। वो ओवरटाइम कर रहे हैं फिर भी उन्हें कुछ खास सैलरी नहीं दी जा रही है, ऊपर से काम टाइम पर करने का नाम लेकर वो उनकी सैलरी तक काट रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इतना सब कुछ चल रहा है और इसका मुझे अब पता चल रहा है। एक काम करो, नक्श की लीडरशिप में कितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किए गए हैं उनकी रिपोर्ट दो, फिर शाम को मैं उसे बताता हूँ कि उसकी पोजीशन क्या है, अभिमन्यु ने जवाब दिया।
पृथ्वी को लगा कि अभिमन्यु का निशाना सिर्फ नक्श ही है, लेकिन अभिमन्यु ने आगे कहा, मैंने पता किया है कि कंपनी के अकाउंट से कुछ बड़े विड्रॉल्स हुए हैं, वो भी नकुल राजवंश की तरफ से। उनकी कोई क्लियर डिटेल्स नहीं दी गई हैं। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो कंपनी के पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करे। मुझे सारी अकाउंट डिटेल चाहिए और उनसे जाकर पूछो कि उन पैसों का कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अगर वो सही से जवाब नहीं दे पाए तो उनके निकाले गए सारे फंड को उनके पर्सनल अकाउंट में जोड़ दिया जाए। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चला गया। वो खुश था कि बहुत टाइम बाद ही सही, लेकिन अभिमन्यु ने इस मामले में एक्शन लिया। जैसे ही नकुल और नक्श को इस बारे में पता चला तो वो दोनों काफी गुस्सा हुए। इस वक्त नक्श नकुल के केबिन में बैठा हुआ था। नक्श ने गुस्से में बोलते हुए कहा, हमारी भी इस कंपनी में एक पोजीशन है, फिर चाचू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे मेरी पोजीशन से रिमूव करना चाहते हैं और आपने जो पैसे निकाले थे वो कंपनी में ही इस्तेमाल हुए हैं, फिर वो आप पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? नकुल ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे हाउस हेल्पर से पता चला कि कल दादी के विला में क्या हुआ था। क्या जरूरत थी तुम्हें ईशिका के आगे पीछे घूमने की? तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में आ रहे हैं। हमेशा की तरह नकुल ने सारा ब्लेम नक्श पर डाल दिया था। नक्श पहले ही अभिमन्यु से चिढ़ा हुआ था। उसने पैर पटकते हुए कहा, अच्छा तो आपको लगता है कि इन सब में मेरी गलती है? बहुत सही जा रहे हैं आप, डरते हैं आप। इस कंपनी में आपकी कोई पोजीशन नहीं है, थोड़े बहुत शेयर के दम पर कुछ दिनों में आपका वही हाल हो जाएगा जो दादू का है। मैं ईशिका को हासिल करके चाचू को कमजोर करना चाहता हूँ, लेकिन आप इस मामले में भी उसी का फेवर कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये फैसला बहुत बेवकूफ़ी भरा है। वो लड़की कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, ऊपर से तुम हमारा नुकसान कराओगे। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे अपने सेक्रेटरी से बात करके फंड्स की डिटेल देनी होगी ताकि अभिमन्यु को शक ना हो। नक्श के केबिन से बाहर आ गया था, लेकिन परेशान तो वो भी था। ऐसे में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके।
वहीं दूसरी तरफ ईशिका केशव के साथ अपने लैब में पहुंची। दिशांक ने रिसर्च की पहले ही सारी तैयारी करवा रखी थी। उसने सब कुछ ईशिका के कम्फर्ट के हिसाब से करवाया था। वैसे तो आप ये काम घर से भी कर सकती थी, लेकिन अब यहाँ आ ही गई हैं तो एक्सपेरिमेंट एरिया के अंदर मत जाना, हमारी टीम काम कर रही है, दिशांक ने उसे पहले ही हिदायत देते हुए कहा। ईशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और सीधे अपने केबिन में चली गई थी। उसने अब तक पार्थ को इस बारे में नहीं बताया था कि वो उसके प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। वहां आते ही ईशिका ने सीधे पार्थ को कॉल किया। मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ पार्थ रायचंद, शाम तक मैं तुम्हें एक डिटेल डेटा भेज दूंगी, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि मुझे क्या चेंज चाहिए। तुम्हें मंजूर हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं, काम करने से पहले ईशिका ने अपनी शर्त रखते हुए कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, बाकी फिलहाल मैं अभी गोवा से बाहर हूँ और जल्द ही वापस नहीं आ पाऊँगा। तुम ऐसा करना, अपने काम को जारी रखना और तुम्हें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। पार्थ ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। ईशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल काट दिया था। पार्थ उसकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार था, ऊपर से उसका इरादा भी नेक था तो ईशिका को शक नहीं हुआ और वो पूरे मन से उसके काम में लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थ भी इस वक्त एक लैब में सुनैना के साथ खड़ा हुआ था। उसकी टीम दवाइयां बनाने के काम में लगी हुई थी। सुनैना ने पार्थ से पूछा, अपना प्लान खुलकर बताओगे? वहां तुमने ईशिका को प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लगा दिया है जबकि तुम्हारी टीम पहले से ही दवाइयां बनाने में लगी हुई है। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दवाइयाँ प्रोजेक्ट के हिसाब से ही बने, लेकिन नाम उसमें डॉक्टर अनामिका का हो। मैं जानता हूँ मॉम, ये दवाइयाँ खतरनाक है और मैं चाहता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट लोगों को एक ही यूज़ में ही देखने को आए ताकि डॉक्टर अनामिका का करियर ख़त्म हो जाए। मैंने ईशिका को सही से प्रोजेक्ट के पेपर्स दिखाए ही नहीं थे। इन दवाइयों के अंदर एक वायरस इंजेक्ट किया गया है जो लोगों को एक जानलेवा बीमारी देगा। एक डॉक्टर होने के नाते ये करना गलत है, लेकिन मुझे उन दोनों को बर्बाद करना है। देखना, ईशिका की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हाँ कहना। बस आप 3 महीने का वेट कीजिए, मैं अभिमन्यु और ईशिका से उनका सब कुछ छीन लूँगा। पार्थ ने अपना पूरा प्लान बता दिया था, जिसे सुनकर सुनैना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसके दिल को सुकून मिल रहा था, आखिरकार उसका अभिमन्यु से अपना पुराना बदला जो होने वाला था। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि पार्थ का प्लान क्या है और वो क्या करने की सोच रहा है। क्या लगता है पार्थ कामयाब हो पाएगा या नहीं? अगले चैप्टर पर मिलते हैं।